समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सायरा मुस्तफा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार देव, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे, वेयर वी ब्रिंग यू अ कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक ऑफ कोर्स द लेटेस्ट न्यूज। और पॉलिटिकल फर्वर तो बड़ा जोर शोर पे है देव, कह सकते हैं। कहीं कैंपेनिंग एंड हो रही है, कहीं साइलेंस पीरियड शुरू हो रहा है, कहीं दूसरे फेज की तैयारियां हो रही है, तो ये सब तो कह सकते हैं सरगर्मियां अपने चरम पे।
बिल्कुल, जैसे गर्मी बढ़ रही है लगातार, वैसे वैसे चुनाव की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर चुनाव अभी होना है वहां पर अब धीरे धीरे लोगों में राजनीति को लेकर दिलचस्पियां बढ़ रही हैं।
एब्सोल्युटली, एंड सो वी विल हैव सम न्यूज रिलेटेड टू दैट एज वेल ऑफ कोर्स। इन आवर मेट्रो न्यूज सेशन वी विल गिव यू एन अपडेट फ्रॉम योर वेरी ओन सिटी, जानेंगे क्या हाल है आपके अपने शहर का। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट सेगमेंट इज व्हिच यू ऑल लुक फॉरवर्ड टू एंड इवन वी लुक फॉरवर्ड टू दैट डे, जिसमें हम लोग कुछ खास हस्तियों को याद करते हैं एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन दिस डे। All of that in the roughly next half an hour. Let's start with the headlines first, Dave.
जी, तो जैसा कि सायरा आपने कहा कि चुनाव की चर्चा हो रही है, तो पहली खबर भी चुनाव से ही जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल यानी कल होगा। इसमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटों, जबकि मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर की 1-1 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर दूसरे चरण में होने वाला मतदान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण तीसरे चरण में कराया जाएगा। इस चरण में कुल 198 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के शेष भाग के लिए भी मतदान इसी चरण में होगा। इस बीच तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1,351 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात की सभी 25, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश की 9, गोवा और दादरा और नगर हवेली की 2-2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा।
President Draupadi Murmu and Vice President Jagdeep Dhankar have expressed condolences over the demise of BJP MP Rajveer Singh Dhillon from Hathras Lok Sabha seat of Uttar Pradesh. Prime Minister Modi has also condoled his demise. In his condolence message, the Prime Minister said that he is deeply saddened by the untimely demise of Mr. Dhillon and it is a big loss for the party. Mr. Rajveer Singh Dhillon died yesterday of a heart attack. He was 65.
भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमा ने आज कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन में एससीओ देशों के क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी रक्षा सहयोग से जुड़ी पहलों की समीक्षा की जाएगी। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा सचिव मंत्रिस्तरीय वार्ता में भारत का पक्ष रखेंगे।
In Chhattisgarh, 18 Maoists, including a militia platoon commander and 3 women, surrendered before the police in Dantewada district yesterday. These Maoists have surrendered before Deputy Inspector General of Police Kamlochan Kashyap and Superintendent of Police Gaurav Rai under the Lone Varatu campaign. The Superintendent of Police said all these surrendered Maoists will be given an incentive amount of 25,000 rupees each and all other benefits under the rehabilitation scheme of the Chhattisgarh government. In some international news, in Kenya, the death toll from the ongoing floods has risen to 38, with over 1,10,000 people displaced. The African nation has registered heavy rain since mid-March, but downpours have intensified over the past week, leading to mass flooding. The Kenyan Red Cross says it has carried out over 188 rescues since the onset in March. Some roads in the Kenyan capital of Nairobi were closed Wednesday and several neighborhoods remained submerged after another day of heavy rainfall. The Kenya Meteorological Department has warned of heavy to very heavy rainfall in parts of the country. US President Joe Biden has signed a $95 billion package of aid for Ukraine, Israel, and Taiwan. Speaking from the White House after signing the bill on Wednesday, President Biden said it was a good day for America, a good day for Ukraine, and a good day for world peace. He spoke a day after the US Senate approved the aid package following months of negotiations and debate. It was passed in a bipartisan vote of 79-18 in the Senate.
और मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान देश के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी की स्थिति जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और तराई वाले इलाकों, सिक्किम और कर्नाटक के भीतरी भाग में लू चल सकती है। बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज लू की आशंका जताई गई है। मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी ओर उत्तर पश्चिम भारत में रविवार तक रुक रुक करके बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है।
आईपीएल क्रिकेट, दिल्ली कैपिटल्स डिफीटेड गुजरात टाइटंस बाय 4 रन इन हाई स्कोरिंग थ्रिलर एट द अनिल रेड्डी स्टेडियम इन दिल्ली लास्ट नाइट। चेसिंग द मैमथ टारगेट, गुजरात फिनिश्ड एट 220 for 8 इन देयर 20 ओवर्स विद द हेल्प ऑफ साई दर्शन 65 of 29 एंड डेविड विलर्स 55 of 23। For Delhi, Rafiq Salam picked up 3 wickets. In today's fixture, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 PM.
दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुरुआती दिन दीपांशु शर्मा ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 3 अन्य भारतीय एथलीटों ने रजत पदक जीते। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में प्रियांशु ने रजत पदक हासिल किया। इससे पहले ऋतिक राठी पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ शो के साथ रजत पदक जीता और इस चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने। और चीन में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में कल भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीमें फाइनल में पहुंच गईं। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फुगे की भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 235-233 से हराया, जबकि ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर की महिला टीम ने एस्टोनिया की को 235-230 से हराया। फाइनल में पुरुष टीम का मुकाबला नीदरलैंड से और महिला टीम का मुकाबला इटली से होगा। तो देश और दुनिया की इन बड़ी खबरों के बाद अब हम रुख करते हैं महानगरों का और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं सायरा के पास।
वेल दे लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। चेन्नई सिटी पुलिस कैनाइन स्क्वाड हैज गॉट 3 बेल्जियन शेपर्ड पपीज। द सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौर सेड दैट द न्यू पपीज विल बी गिवन स्पेशल ट्रेनिंग टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द पुलिस एंश्योरिंग द कंटिन्यू सक्सेस ऑफ द स्निफर डॉग स्क्वाड इन मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी। The puppies named Charles, Lando and Carlos will be under the supervision of the sub-inspectors of police in the dog squad. Till now, there are 21 sniffer dogs with specialized training. Centre for Wireless System Design at Anna University offers a summer internship program in 5G wireless communication, semiconductor IC design and testing, machine learning in systems design, wireless transceiver design, network security and PCB CAD tools. The duration of the internship is 2 to 4 weeks. Candidates who have completed 4 semesters can apply to the program. So I hope the citizens of Chennai, especially students, will take benefit of this internship. Moving on to Bengaluru, the curtains have come down on public election campaigns in 14 Lok Sabha constituencies going to polls on 26th of April in Karnataka. The silence period began at 6 PM yesterday, signaling an end to the political campaigns. The political parties can canvass for votes with less than 5 people today. Political functionaries who are not the voters of these constituencies have to move out. However, this restriction is not applicable to the general public and tourists. The political parties are prevented from setting up polling booths within 200 meters radius of a polling station. Only one booth is allowed per location of a polling station, regardless of auxiliary stations. At booths, only a simple voter slip without the name and symbol of the political party can be distributed to help voters locate their booths. And moving on to Hyderabad and Telangana, 230 candidates have filed over 300 sets of nominations for the 17 Lok Sabha constituencies in the state on the penultimate day yesterday. The total number of nominations received by the returning officers till yesterday reached over 850 by 547 candidates. This is on account of multiple nominations filed by candidates in few Lok Sabha constituencies. A majority of independent candidates filed their nominations from different constituencies, and the final list of valid contestants will be known only after the deadline for withdrawal of nominations on the 29th of this month. Meanwhile, the deadline for filing nominations will come to a close by 3 p.m. today. So, Dev, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Yes, sir. आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके परिवार और करीबियों को मिलने नहीं दे रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और शिक्षा मंत्री आतिशी ने नियमों का पालन करते हुए श्री केजरीवाल से मिलने का आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने केवल सौरभ भारद्वाज को ही मुख्यमंत्री से मिलने दिया। दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के विरोध में कल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को तोड़ने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस षड्यंत्र को दिल्ली की मातृशक्ति कभी सफल नहीं होने देगी। उत्तर रेलवे ने पेयजल की बर्बादी को रोकने के लिए वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों को 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल देने का निर्णय लिया है। रेलवे ने कहा है कि अगर किसी यात्री को और पानी की आवश्यकता होगी तो उन्हें 500 मिलीलीटर की एक और पानी की बोतल दी जाएगी। इसके लिए रेलवे द्वारा यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने दिव्यांग छात्रों के लिए संस्थान में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इसके तहत कक्षाओं में रैंप और लिफ्ट में ब्रेल साइनेज लगाया गया है। संस्थान की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य प्रशासनिक भवन में दिव्यांग छात्रों के लिए एक पोर्टेबल शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आईआईटी परिसर के पास दिव्यांग छात्रों के परिवहन के लिए एक सुलभ ई कार्ट की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए ऊंची टेबल और व्हीलचेयर लगाया गया है ताकि उन्हें प्रयोगशाला में किसी तरह की परेशानी न हो। और मुंबई का रुख करें तो मुंबई के मलाड इलाके में बुधवार को एक निर्माणाधीन इमारत के 40 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक अन्य मजदूर की हालत गंभीर है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि ये दुर्घटना दोपहर करीब 3:50 पर हुई और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कम से कम 3 से 4 लोग भूमिगत सेप्टिक टैंक में गिर गए थे। मध्य रेलवे ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सीएसआर फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से भायखला में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल के सर्जरी विभाग को एक अत्याधुनिक डबल बैलून एंट्रोस्कोप दान करके स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। मध्य रेलवे की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 50 लाख रूपये मूल्य के इस अत्याधुनिक उपकरण का उद्देश्य चिकित्सा देखभाल को आगे बढ़ाना और जरूरतमंद रोगियों को लाभ पहुंचाना है। गर्मी के मौसम के दौरान मुंबई से उत्तर के लिए अधिक ट्रेनों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मुंबई और गोरखपुर के बीच 28 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर स्पेशल 28 फेरे लगाएगी। और कोलकाता का रुख करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए कल कोलकाता में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय ने बुधवार को विधानसभा में इस कार्यशाला का उद्घाटन किया था। इसका आयोजन राज्य विधानसभा और नई दिल्ली की पीआरएस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस कार्यशाला में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा संसदीय कार्यमंत्री शंभुदेव चट्टोपाध्याय और विधानसभा के सचिव सुकुमार रॉय उपस्थित थे। महानगरों की खबरों के बाद अब हम बात करते हैं महानगरों के मौसम की। और जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि मौसम विभाग के हवाले से यह पता चला है कि देश के कई राज्यों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की सबसे पहले बात करें तो यहां पर दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि तापमान अभी 40 डिग्री से कम 38 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दिन में न्यूनतम तापमान आज 21 डिग्री रहा जिसके चलते सुबह का मौसम बेहद सुहावना रहा। और वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, बारिश की संभावना यहां पर भी नहीं है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम 34 डिग्री के आसपास रहेगा। सायरा यहां पर 34 डिग्री तापमान रहेगा लेकिन जो दिल्ली में 38 डिग्री है ना उससे ज्यादा असहज रहेगा मौसम। उसकी वजह है कि ये कोस्टल सिटी है और यहां पर ह्यूमिडिटी एयर में बहुत ज्यादा होती है।
राइट।
और कोलकाता के लिए भी स्थिति रहेगी और कोलकाता में हीट वेव का भी अलर्ट है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
Well, there Chennai is expected to have a partly cloudy sky today, where temperature will hover between 26 and 37 degrees Celsius. Bengaluru will have a partly cloudy sky as well. Minimum temperature was 23, while maximum will be around 36 degrees Celsius. And Hyderabad will have a partly cloudy sky as well. The temperature will hover between 27 and 41 degrees Celsius.
और मौसम के बाद अब हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों को पलटने की। तो आइए जानते हैं 25 अप्रैल के दिन ऐसा क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ जो इतिहास का हिस्सा बना। वर्ष 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और 1867 में जापान की राजधानी टोक्यो में विदेश व्यापार की अनुमति दी गई थी।
On this day in 1859, the construction of the Suez Canal officially began, and it took 10 years to complete the construction, which is the waterway connected the Mediterranean and the Red Seas.
जी, और वर्ष 1898 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। 1901 में न्यूयॉर्क ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट की आवश्यकता वाला पहला राज्य बन गया था। और 1905 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को मतदान का अधिकार मिल गया था।
On this day in 1954, Bell Labs announced the first solar battery made from silicon. Also in 1982, India's first color telecast started on Doordarshan. तो वो एक दौर भी एक अलग ही अपने आप में कह सकते रेवोल्यूशनरी था, when we switched from black and white to color.
जी, और ये भारतीय टेलीविजन और मनोरंजन के क्षेत्र में सारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन था।
Yes.
और ये हम सभी जानते हैं कि उस समय एशियाई खेल होने वाले थे और उसी के मद्देनजर भारत में ये शुरुआत की गई थी।
एंड इफ यू रिमेम्बर डीडी मेट्रो चैनल, जिसमें बच्चों को इंतजार रहता था शक्तिमान का, जूती और ऑफकोर्स इट इन कलर वॉज अ बिग थिंग। एंड ऑल्सो ऑन दिस डे 1990, द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज वॉज प्लेस्ड इन टू द ऑर्बिट बाय स्पेस शटल डिस्कवरी।
और इससे कुछ पहले चले तो वर्ष 1953 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की व्याख्या की थी। और 1975 में सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और अमेरिकी सेना ने तेहरान स्थित अपने दूतावास से 53 बंधकों को छुड़ाने का गोपनीय अभियान वर्ष 1980 में आज के दिन चलाया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई और 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ये संकट 444 दिन तक चला और अंततः जनवरी 1981 में इन बंधकों की रिहाई हो पाई।
On this day in 2011, the largest tornado outbreak ever recorded hit the US, killing 348 people in 6 states. And in 2015, on this day, a 7.8 magnitude earthquake struck near Kathmandu in Nepal, causing widespread damage and killing several thousand people.
1981 में जापान के सुरुगा में एक परमाणु संयंत्र में मरम्मत कार्य के दौरान 100 से अधिक मजदूर परमाणु विकिरण का शिकार हो गए थे। वर्ष 1983 में जर्मनी की पत्रिका स्टर्न ने हिटलर की उस विवादास्पद डायरी को छापना शुरू किया, जिसे उसने कथित रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कलमबद्ध किया था। डायरी की प्रामाणिकता पर कई सवाल उठाए गए थे। तो ये रही कुछ बातें इतिहास में दर्ज आज के दिन से जुड़ी घटनाओं की। और अब हम याद करते हैं उन महान लोगों को जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। और इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को, जिनकी गणना भारत के महानतम गायकों और संगीतज्ञों में की जाती है। वे विलक्षण और मधुर स्वर के स्वामी थे। इनके गायन को सुनकर श्रोता अपनी सुध बुध खो देते थे।
सुंदर प्रिया और चले
खां साहब की मखमली आवाज सभी को मंत्र मुग्ध कर देती थी। दिल को छू लेने वाली आवाज के मालिक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने नवेली शैली के जरिए ठुमरी को नई आब और ताब दी। जानकारों के मुताबिक उस्ताद ने अपने प्रयोगधर्मी संगीत की बदौलत ठुमरी को जानी पहचानी शैली की सीमाओं से बाहर निकाला।
And though he started his career by singing a few compositions of his late father Ali Bakhsh Khan and uncle Kale Khan, Bade Ghulam he amalgamated the best of three traditions into his own Patiala Kasoor style, that is the Behramkhani elements of Dhrupad, the gyrations of Jaipur and the Ghalawas or embellishments of Gwalior. And Dev was bahut waqt tak ke wo filmi duniya se kafi dur rahe, but we all know that K. Asif was successful in convincing him to sing for Mughal-e-Azam. And uske liye aap soch sakte hain ki jis daur mein Rafi aur Lata 500 rupaye lete the ek gaane ke, unhone kitne liye?
Mujhe bilkul bhi andaaza nahi.
25,000 per song.
To iska matlab ye tha ki wo bilkul bhi nahi chah rahe the ki unko फिल्म में गाने का मौका मिले या वो गाना चाहे,
तो
वो ऐसा पैसा उन्होंने ऑफर कर दिया कि जो शायद प्रोड्यूसर दे न सके, लेकिन yes, उन्होंने दिया।
That's true.
जी, और उन्हें पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया।
Remembering Devika Devadas, she was born as Pramila Devi. It's her birth anniversary today. An actress who worked predominantly in Telugu and Tamil cinema, along with few Malayalam, Kannada, and Hindi films as well. She was one of the popular lead actresses in the 1960s, and she also appeared with MGR in a film, and we have a song from that film.
பணியில்லாத மார்க்கையா படையில்லாத மன்னவரா, பணியில்லாத மார்க்கையா படையில்லாத மன்னவரா, இனிப்பில்லாத முக்கனியா இசையில்லாத முத்தமையா, இனிப்பில்லாத முக்கனியா இசையில்லாத முத்தமையா, பணியில்லாத மார்க்கையா படையில்லாத மன்னவரா।
भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में शुमार पंडित राजन मिश्रा का स्मरण करते हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। पंडित राजन मिश्रा अपने भाई साजन मिश्रा के साथ जुगलबंदी करते थे। शास्त्रीय गायन की इस जोड़ी को पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल हुई। 400 साल की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दोनों भाइयों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें संगीत जगत में बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। बनारस घराने में जन्मे पंडित राजन और पंडित साजन मिश्रा को संगीत की शिक्षा उनके दादाजी पंडित बड़े राम मिश्रा जी और पिता पंडित हनुमान मिश्रा ने ही दी थी। साल 2007 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में राजन मिश्रा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
भंग के छनैया, भंग के छनैया और गंग के धरैया, भंग के छनैया और भंग के छनैया और गंग के धरैया, तुम भो
पंडित राजन मिश्रा का 2021 में 25 अप्रैल को कोरोना के कारण निधन हो गया था।
Today we are also remembering Shahu Modak, an actor who acted mainly in Hindi and Marathi films. Shahu Modak was mostly famous for the mythological characters that he played. In fact, Dev, उन्होंने कृष्ण जी की भूमिका कह सकते हैं। He played Krishna in 30 films. And he was obviously known for that, and he also played the roles of Gyaneshwar as well. And he was also, though he was born in a Marathi Christian family, lekin unke jo devotional characters the, wo bahut pasand kiye jaate the. He acted in numerous films from 1932 to 1986. And he also sang two songs for a film called Bharat Mela. But we have a song from one of his films.
काम लाएगा ये दुनिया का मेला आया है अकेला और तू जाएगा अकेला आया है अकेला और तू जाएगा अकेला कुटुंब कबीला सारा झूठा जमेला आया है अकेला और तू जाएगा अकेला।
भारतीय सिनेमा में अपने समय के ख्याति प्राप्त पटकथा लेखक पंडित मुखराम शर्मा की भी आज पुण्यतिथि है। मेरठ से माया नगरी मुंबई पहुंचे पंडित मुखराम शर्मा ने फिल्मी दुनिया में बतौर कथा पटकथा और संवाद लेखक नाम बनाया। वर्ष 1942 में उन्हें राजा नेने द्वारा निर्देशित फिल्म 10 बजे के गीत लिखने का मौका मिला। फिल्म एक सुपरहिट रही। अगली फिल्म तारामती लिखी। यह फिल्म न सिर्फ एक बड़ी हिट साबित हुई बल्कि मुखराम जी द्वारा इसके तुरंत बाद लिखी गई अगली दो फिल्में विष्णु भगवान और नल दमयंती को भी बड़ी सफलता मिली। उनकी मराठी फिल्म स्त्री जन्मा तुझी कहानी को भारी सफलता मिली और ये उनकी एक यादगार फिल्म कही जाती है। और अन्य मुख्य फिल्मों की बात करें तो वचन, घराना, धूल का फूल, दादी माँ, संतान, पतंगा, दो कलियां, राजा और रंग और एक ही रास्ता। पंडित मुखराम शर्मा ने अपने बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कार जीते। वर्ष 1950 से 1970 तक उनके उल्लेखनीय पुरस्कारों में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल थे जो उन्हें फिल्म औलाद, वचन और साधना के लिए मिले थे। आइए उनकी लिखी फिल्म यानी उनकी स्क्रीन प्ले लिखी फिल्म का एक गाना सुनाते हैं आपको।
And today is also Arijit Singh's birthday. We all know that he's a very accomplished singer in his own right, and he has received several accolades, including a National Film Award and 7 Filmfare Awards, and has recorded songs in several films, even in Hindi and Bengali. He's noted for his ability of performing songs in diverse music genres and is acclaimed for his significant contributions to contemporary Indian film music. Just listen to his song.
मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल
Arijit grew up listening to Mozart, Beethoven and Bengali classical music as well. He idolized musicians like Bade Ghulam Ali Khan, Ustad Rashid Khan, Zakir Hussain and Anand Chatterjee, and also enjoyed listening to Kishore Kumar, Hemant Kumar and Manna Jay. So here is wishing a very happy birthday to Arijit.
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन शुभकामनाओं के साथ दीजिए देवेंद्र त्रिपाठी और सायरा मुस्तफा को कार्यक्रम आज तक समाप्त करने की अनुमति। लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड।
Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.